ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।
देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। समय के हिसाब से देश में होने वाले अलग अलग तरह के अपराधों में सजा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि नए कानूनों में आखिर क्या अलग होगा। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी। सर, विशेष चर्चा में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
सर, समय की मांग को देखते हुए नए आपराधिक कानून लाए जा रहे हैं, इनमें आखिर किन बातों को प्राथमिकता दी गई है?
जो हमारे नए कानून हैं, ये सबको विदित है कि 1 शताब्दी से भी अधिक पुराने कानून हैं। विशेषकर हमारी जो आईपीसी और जो एविडेंस एक्ट थी, सीआरपीसी में ये बदलाव 1973 में भी किया गया था। तो समय के साथ जो अपराध के तरीके, अपराध की विवेचना तथा इन्वेस्टिगेशन के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। तो समय की मांग को देखते हुए इसमें बदलाव किए गए हैं। जो मुख्य कानून है उसमें पुराने सभी कानूनों को रखा गया है, कुछ नए अपराध के चीजें ऐड की गई हैं तथा कुछ का बेटर व्याख्यान किया गया है। जैसे कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और उसको एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है। संगठित अपराध को भी नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें कि एक कोटरी या सिंडिकेट बना के लोग काम करते, जैसे कि अपहरण है, जबरन वसूली इत्यादि इसमें शामिल है। छोटे छोटे संगठित अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों को भी अलग अपराध के रूप में सृजित किया गया। मॉब लिंचिंग को भी एक नया अपराध बनाया गया है और इसमें कठोर दंड, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक के प्राविधान किए गए हैं। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में जो डालने की चीजें हैं, ये चीजें पहले उतनी क्लियर नहीं थी, जिनको अब स्पष्ट रूप से प्राविधानों के तहत रखा गया है।
पहले के कानूनों में आखिर ऐसी कौन सी खामियां थी जिन्हें नए आपराधिक कानूनों के जरिए दूर करने की कोशिश की गई?
जो मूल भावना है, संसद में इस पर डिस्कशन हुआ तो ये बताया गया कि अब सजा दिलाने की भावना नहीं, अब न्याय देने की भावना। दूसरा, पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई। ये भी सुनिश्चित कराया गया है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या एक्यूज्ड हो, किसी का उत्पीड़न न हो। इसके लिए जैसे तमाम तरह की चीजें होती थी कि पुलिस के द्वारा उत्पीड़न, तो जितने नए प्राविधान इसमें ऐड किए गए हैं या जो प्रक्रियाएं तय की गई हैं, उसमें सबका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। अगर मौके पर पुलिस जाती है तो उसको भी उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा, वो किस समय लिया गया, उस किस लोकेशन पे लिया गया, इन सब चीज की हैशटैग वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पुलिस के द्वारा जो पहले अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, इसकी संभावनाओं को टोटली हटाया गया है। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग किया गया और ज्यादा से ज्यादा सजा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इसमें फॉरेंसिक जो एविडेंसेस होते हैं उस पर भी बल दिया गया है। इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि कानून में भी कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे कि मैक्सिमम कन्विक्शन की रेट हम बढ़ जाए, प्लस जो 7 साल के ऊपर की सजाएं हैं वहां पे मैंडेटरी है कि हम फॉरेंसिक वैन लेके जाएं। अब बहुत तरह के इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल किए गए हैं जिससे कि अल्टीमेटली विक्टिम को न्याय मिलने में सहूलियत होगी और जल्दी से न्याय मिलेगा, तथा इस पूरे चेन में जो लोग भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं उनके संभावनाओं को और कम किया गया।
सर, ऐसे कौन से मुख्य अपराध हैं जिनमें सजा का प्रावधान अब बदल दिया गया है और कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है?
जैसे महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते रहे, जो पुराने हमारे आईपीसी थे उसमें संशोधन किया जाता था समय समय पर, अब है कि इन सभी चीजों की पूरी व्याख्या अभी से कर दी गई है। जैसे पॉक्सो एक्ट है, छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बातें हैं, इन सभी चीजों के लिए कठोर दंड का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग है, संगठित अपराध है, आतंकवादी कृत्य है, इसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक के भी प्राविधान किए गए हैं।
मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ये भीड़ के द्वारा किया गया अपराध होता है जिसमें आरोपी को चिन्हित करना काफी मुश्किल है। तो सर, मॉब लिंचिंग के अपराध से निपटने के लिए नए कानूनों में क्या प्रावधान किए गए हैं?
मॉब लिंचिंग के केस में अगर 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या जाति, जन्म स्थान या भाषा आदि के कारण से की जाती है,
तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या उम्र कैद के दंड से दंडित किए जाने का प्राविधान है और इस दौरान अगर भीड़ के द्वारा गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और जो नई तकनीकें इस दौरान विवेचना के लिए अपनाई जाएगी उससे इस तरह के एविडेंसेस जो विवेचक हैं या पुलिस हैं उनको कोर्ट में देना पड़ेगा जिससे कि भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता के बारे में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे।
सर, पीड़ित के साथ ही अपराधी को सजा दिलाने में गवाह की भी बड़ी भूमिका होती है, तो ये नए कानून गवाह को पूरी प्रक्रिया के दौरान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं?
जैसे गवाहों के बयान अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए जाने का प्राविधान किया गया है तो गवाह बार बार कहीं जाके गवाही दे इससे होस्टाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भी उसकी गवाही हो सकती है। कोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं, समन है, नोटिस है, इसको SMS और ईमेल के माध्यम से भी भेजा जाएगा और इसके तहत राज्य सरकारों को एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जैसे जो गवाह है उसको कोई धमकाए नहीं, उसके साथ कोई अनहोनी घटना न हो, इसलिए महत्वपूर्ण केसेस में गवाहों की सुरक्षा के लिए भी एक पॉलिसी बनाए जाने के निर्देश नए कानून में दिए गए हैं और साक्षियों को भी TADA जैसे कोई जाता है तो उसके ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस देने के प्राविधान।
सर, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है, ऐसे में भारतीय न्याय संहिता 2023 में इनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया गया है?
एक तो जो महिलाओं और बालकों से संबंधित सभी अपराधों को एक अध्याय जो 5वां अध्याय है उसमें एक जगह संकलित कर दिया गया है और जो भी महिलाओं और बालकों के संबंधी अपराध की विवेचना और विचारण हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है जिसके कारण इनके इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी आएगी और इसके लिए केंद्र सरकार तक से मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है। बलात्कार के पीड़ितों का बयान केवल महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा और अगर महिला मजिस्ट्रेट अवेलेबल न हो तो पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर बयान लेता है तो वहां किसी भी महिला की उपस्थिति अनिवार्य है जिससे कि कोई निजता का हनन किसी भी महिला का न हो, इसका ध्यान किया गया है और जो बलात्कार से पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से भी हम लोग करा सकते हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको पुलिस स्टेशन अनिवार्य उपस्थिति से छूट का भी इसमें प्राविधान है जिसके लिए मैंडेटरी होगा कि विवेचक उनके पास स्वयं जाके ऐसे व्यक्तियों से उनका बयान और स्टेटमेंट्स वगैरह ले सके।
अक्सर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें अपराध गंभीर होने पर भी अपराधी की उम्र कम होने के कारण वो सजा से बच जाते हैं, ऐसे में किशोर न्याय या जुवेनाइल जस्टिस को लेकर आखिर क्या बदलाव लाए जा रहे हैं?
पहले जो जुवेनाइल अभियुक्त होते थे वो उम्र का तकाजा देके बच जाते थे लेकिन अब उनके वयस्क अभियुक्त की भांति उनके मानसिक रूप से जो लोग परिपक्वता होगी उसके आधार पे ये चीजें तय की जाएंगी कि अभियुक्त वयस्क है या नहीं है।
सर, मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, खासकर बच्चों के मामले में, ऐसे में नए कानूनों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े कानूनों को कैसे मजबूत किया गया है?
भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संगठित अपराध को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है जिसमें किसी भी व्यक्ति की तस्करी और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी के अपराध भी शामिल किए गए हैं। इनके लिए कड़ी सजा जैसे कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास का भी प्राविधान है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदने के मामले में बढ़ी हुई सजा का प्राविधान किया गया है जिसमें न्यूनतम 7 साल की सजा अनिवार्य है जिसे 14 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशों से मानव तस्करी के अपराध को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है, इसमें जबरन या बहकावे से यौन शोषण के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों और 21 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं दोनों की तस्करी को अपराध बनाया गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण की परिभाषा में भिक्षावृत्ति को भी जोड़ा गया है।
आजकल अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत के मामलों को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, ये नए आपराधिक कानून मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आखिर क्या बदलाव लेकर आएंगे?
अमूमन ये देखा जाता था कि लापरवाही की आड़ में जो व्यक्ति सही इलाज भी करते थे उनका भी उत्पीड़न होता था, तो इन चीजों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की लापरवाही से मृत्यु होने की दशा में 2 साल के कारावास और जुर्माने के दंड का प्राविधान है, ये चिकित्सीय लापरवाही के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णयों के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार
अनुसार कार्रवाई की जाती है और इसको नए कानून में ऐड भी किया गया है।
इन नए कानूनों को लागू कराने में पुलिस की भूमिका बड़ी होगी। प्रदेश के पुलिस कर्मियों को इन बदलावों के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा है?
जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया था कि 1 जुलाई 2024 से हमारे नए कानून लागू हो जाएंगे, उस समय से ही विभाग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है और हमारे जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं जिसमें आईपीएस और पीपीएस के अधिकारी होते हैं, उनकी 100% ट्रेनिंग यहाँ पर्सनली रिसोर्स पर्सन के द्वारा, जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा दे दी गई है। हमारे जेल विभाग के सभी कर्मी प्रशिक्षित हो चुके हैं। हमारे जितने भी सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी 100% ट्रेनिंग हो गई है। जनरल इलेक्शन के कारण फोर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा था, इसके कारण कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग लगभग 50% हुई है। तो हम लोग बचे हुए दिनों में 50% की ट्रेनिंग अवश्य करा लेंगे और जब 1 जुलाई के पहले 30 जून तक हमारी ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा जो नए कानून है इनमें किस तरह से धाराओं में बदलाव हुआ है, इसके लिए जो बुकलेट्स हम लोग ने बनाई वो हमने अपने सभी व्यक्तियों को पॉकेट डायरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और बीपीआरएनडी के थ्रू इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वीडियो फॉर्म में भी तैयार किए गए हैं, जो हमारे यूपी पुलिस के वेबसाइट पे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, जिसे कोई भी व्यक्ति जाके चीजों को देख रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अधिवक्ताओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे प्रेस के रिपोर्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और आकाशवाणी और टीवी के माध्यम से भी हम लोग अपनी तैयारियों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे जब चीजें जमीन पर लाई जाएगी तो उस समय किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति न हो।
इन नए आपराधिक कानूनों में न्याय प्रक्रिया को तकनीक से कैसे जोड़ा गया है?
प्रत्येक स्टेज में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर या हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। समन वारंट को हम ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भी भेजने की इसमें व्यवस्था है। विवेचना और ट्रायल के दौरान गवाह का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज किए जाने का भी विकल्प अवेलेबल है। EFIR दर्ज करने की सुविधा इन कानूनों के लागू होते ही प्रारंभ हो जाएगी, जिसको कंप्लेनेंट को FIR के रूप में एक लिमिटेड समय अवधि के अंदर जाके कन्वर्ट कराना होगा, जो दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड आदि को भी शामिल किया गया है, जिसे प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। तलाशी, जब्ती और बरामदगी आदि के कार्रवाइयों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, जिससे कि पुलिस के कार्य में पारदर्शिता आएगी। चार्जशीट न्यायालय में डिजिटल तरीके से जमा की जाएगी तथा अभियुक्तों को आरोप पत्र आदि की प्रतियां भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कराई जा सकेंगी।
सर, हम अक्सर देखते हैं कि अपराध के बाद न्याय मिलने में काफी लंबा समय लग जाता है, तो ऐसे में नए कानूनों में इसको लेकर क्या कुछ तय किया गया है?
टेक्नोलॉजी के समावेश के कारण सभी चीजों की एक समय अवधि तय की गई है कि कितने दिन में एक विवेचक को क्या क्या किया जाना है। अगर वो नहीं करता है तो अपने आप उनके सुपरवाइजरी लेवल पे इस तरह की चीजें जो गैजेट्स उसके पास दिए जाएंगे उसका पॉपअप आएगा, मतलब उनको एक अलर्ट मिलेगा कि ये डिले हो रहा है। हमारा जो कंप्लेनेंट है वो भी इन चीजों को परसू कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि जैसे बलात्कार पीड़िता के बारे में 7 दिन के अंदर उनकी मेडिकल रिपोर्ट भेजना जाना डेटरी है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये लोग, उनके लिए भी समय अवधि तय की गई है। तो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं कि इसमें एक निश्चित समय अवधि के तहत उनकी विवेचना भी पूरी होगी, साथ ही साथ कोर्ट में भी चीजें चली जाएंगी। कोर्ट के लिए भी कुछ बाध्यताएं हैं कि वो कितने दिन में ट्रायल करेंगे। विटनेसेस के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देने की सुविधा रहेगी। ये चीजें जो सामान्य साक्षी हैं उन पर भी लागू है, जो पुलिस के कर्मी हैं वो भी लागू। ट्रांसफर हो गया उनको बार बार पुरानी जगह नहीं आने की जरूरत है। इस तरह की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे कि वहीं से जहां पे वर्तमान नियुक्ति है वहां से वो गवाही दे सकते हैं। और जो हम फॉरेंसिक चीजें घटनास्थल से उठाएंगे उसकी स्टैंपिंग होगी, हैश वैल्यू होगा कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से चीजें उठाएगी, और वो ऑनलाइन सुपरवाइजरी लेवल पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक जाने का प्राविधान है।
बिल्कुल सर, नए आपराधिक कानून न सिर्फ पुलिस की जवाबदेही बढ़ाते हैं बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ पीड़ित के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा भी करते हैं। प्रशांत कुमार जी, हमसे इस विषय पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी आशा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है और जिस तरह से ऑल इंडिया रेडियो का रीच है, जहां तक इसकी पहुंच है, आम जन को नए कानूनों के बारे में बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो लोग संतुष्ट होंगे और इससे एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा।
अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।